आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब दुनिया के काम करने के तरीके को लेकर हमारी बुनियादी समझ को ही चुनौती दे देगा।
बिल्कुल, और आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के बुक ऑफ जॉब पर दिए गए 25वें सेशन को अपना आधार बना रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऑर्डर, नॉन ऑर्डर और डिसऑर्डर।
हाँ, और इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और दुनिया की इस अव्यवस्था को एक नए नजरिए से देखें। मतलब सूचनाओं की इतनी भीड़ में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के एक तार्किक समझ विकसित करना।
सही कहा। देखिए, हम इंसानों को ना सटीकता बहुत पसंद है, जैसे कोई मेडिकल जांच हो।
हाँ, जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उंगली रखकर कह देता है कि देखिए ये रही समस्या।
बिल्कुल, और वो चीजें हमें बहुत सुकून देती हैं जहाँ सब कुछ एकदम साफ हो, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ब्लैक एंड व्हाइट। इससे चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है।
पर जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है, मतलब अचानक तूफान क्यों आते हैं, महामारियां क्यों फैलती हैं और इन सब के बीच ईश्वर का नियंत्रण कैसे काम कर रहा है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन वाला लॉजिक काम करना बंद कर देता है।
एकदम सही कह रही हैं। हम एक ऐसे परिदृश्य में कदम रख देते हैं जो बहुत ही धुंधला है, बहुत जटिल है,
और आज हमें इसी धुंधलेपन को साफ करना है। तो दुनिया वर्तमान में कैसे काम करती है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें वहां जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब सृष्टि का निर्माण।
क्योंकि किसी भी जटिल सिस्टम को समझने के लिए उसके शुरुआती डिजाइन को समझना बहुत जरूरी होता है।
तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्राचीन दुनिया में और अगर हम आज भी सोचें तो निर्माण या क्रिएशन का मतलब सिर्फ शून्य से कुछ नई चीजें बना देना नहीं था, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर वॉल्टन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने रखते हैं। उनके अनुसार निर्माण का असली मतलब था चीजों को व्यवस्थित करना, मतलब उनमें एक ऑर्डर या व्यवस्था स्थापित करना।
श्रोत में उन्होंने इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण भी दिया है।
हाँ, वो बक्सों वाला उदाहरण। जैसे मान लीजिए कोई परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है, घर बनकर तैयार है और सारा सामान ट्रकों से उतरकर कमरों में आ चुका है।
मतलब सारा भौतिक सामान वहाँ मौजूद है लेकिन वो सब गत्ते के बक्सों में बंद है।
बिल्कुल, तो क्या वो घर उस स्थिति में रहने लायक है?
जाहिर है बिल्कुल नहीं।
यही बात समझने वाली है। उस घर को असल में एक घर बनाने के लिए उन बक्सों को खोलना पड़ता है, ये तय करना पड़ता है कि सोफा किस कमरे में रखा जाएगा या बर्तन रसोई में कैसे सजे होंगे।
मतलब हर चीज को उसका काम या फंक्शन देना पड़ता है।
सही कहा। निर्माण की प्रक्रिया का असली अर्थ ही इस व्यवस्था को स्थापित करना है। जेनेसिस एक को देखते हुए हम पाते हैं कि शुरुआत में दुनिया एक नॉन ऑर्डर यानी अव्यवस्था की स्थिति में थी।
कच्चा माल मौजूद था लेकिन उसे अभी उसकी भूमिका नहीं दी गई थी।
हाँ, और डॉक्टर वॉल्टन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये नॉन ऑर्डर कोई बुरी चीज या बुराई नहीं है।
ये एक ऐसा भ्रम है जिसे हम इंसान न जाने कब से पालते आ रहे हैं। मतलब हम अक्सर अव्यवस्था को सीधे बुराई या पाप से जोड़कर देख लेते हैं,
जबकि उत्पत्ति के समय का वो नॉन ऑर्डर कोई बुराई नहीं था। वो बस एक अधूरा काम था, एक वर्क इन प्रोग्रेस। ईश्वर ने दुनिया को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया लेकिन सारा काम एक ही पल में पूरा नहीं हुआ।
जैसे अदन के बगीचे के अंदर एक व्यवस्था थी लेकिन बगीचे के बाहर की दुनिया में वैसी व्यवस्था नहीं थी, है ना?
बिल्कुल। समुद्र को भी उस नॉन ऑर्डर का एक स्थान माना गया है और यही इंसानों की भूमिका तय की गई। इंसानों को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया था
ताकि वे ईश्वर के साथ मिलकर इस नॉन ऑर्डर को व्यवस्थित करने के काम में साझेदार बन सके।
एकदम सही।
एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उन्होंने शुरुआत में ही पूरी तरह से व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित कर दी?
ये सवाल बहुत आता है।
मतलब क्या सिर्फ अपनी उंगली घुमाकर पूरी दुनिया को एकदम परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता था? इंसानों को ये काम सौंपना तो ऐसा लगता है जैसे डिजाइन में कोई खामी रह गई हो।
यह सवाल बहुत से विचारकों को परेशान करता रहा है लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इसका जो जवाब देते हैं वो पूरा नजरिया ही बदल देता है। उनके अनुसार ये ईश्वर की कोई अक्षमता या डिजाइन की विफलता नहीं थी।
तो फिर क्या था?
ये उनकी असीम बुद्धिमत्ता या विजडम का हिस्सा था। देखिए, ईश्वर चाहते तो एक ही सेकंड में पूरी तरह से व्यवस्था स्थापित कर सकते थे लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक लंबी प्रक्रिया को चुना।
अच्छा।
उन्होंने इंसानों को इस दुनिया में महज मूक दर्शक बनाकर नहीं रखा बल्कि उन्हें इस विकास यात्रा में अपना साझीदार बनाना उचित समझा। ये इंसानों के साथ एक संबंध स्थापित करने का तरीका था।
समझ रही हूँ। मतलब इंसानों के पतन या फॉल से पहले भी दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां स्थापित ऑर्डर भी था और वो नॉन ऑर्डर भी मौजूद था जिसे इंसानों के साथ मिलकर व्यवस्थित किया जाना बाकी था।
बिल्कुल सही।
तो इसका मतलब है कि ऑर्डर और नॉन ऑर्डर दुनिया के मूल डिजाइन का ही हिस्सा थे। फिर ये डिसऑर्डर यानी वास्तविक बुराई कहाँ से आ गई?
इसके लिए स्रोत सामग्री जेनेसिस 3 का संदर्भ देती है जहां से डिसऑर्डर का प्रवेश होता है। ये वो अवस्था है जो वास्तव में बुराई को दर्शाती है
और इसे मुख्य रूप से इंसानों के फैसलों द्वारा लाया गया है ना?
हाँ, हालांकि स्रोत कुछ ब्रह्मांडीय बुरी ताकतों की भी बात करता है, लेकिन इस दुनिया में फैले विकार या डिसऑर्डर का मुख्य दोष अंततः इंसानों के गलत चुनाव पर ही मढ़ा गया है।
तो अगर हम इस पहले हिस्से को समेटें तो बात ये सामने आती है कि हम इंसान वर्तमान में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तीन चीजें एक साथ मौजूद हैं। पहला वो ऑर्डर जो ईश्वर ने स्थापित किया है, दूसरा वो नॉन ऑर्डर जो अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया है, और तीसरा वो डिसऑर्डर या बुराई जिसे इंसानों ने प्रवेश करने दिया।
और इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दुनिया अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से ईश्वर के गुणों को नहीं दर्शाती। ये एक अपूर्ण दुनिया है।
और यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर ये दुनिया अपूर्ण है और इसमें नॉन ऑर्डर लगातार काम कर रहा है, तो फिर हम हर प्राकृतिक आपदा के पीछे कर्मों का हिसाब क्यों ढूंढने लगते हैं?
ये बहुत ही गहरी बात है।
मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं कि दुनिया न्याय के एक बहुत ही सख्त सिद्धांत पर चलती है, जिसे कर्मफल का सिद्धांत या रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा जाता है।
देखिए, बुक ऑफ जॉब को समझने के लिए इस सिद्धांत को समझना सबसे अहम है। जॉब और उसके दोस्तों का दृढ़ विश्वास था कि दुनिया इसी कर्मफल के सिद्धांत पर चलती है,
कि ईश्वर का न्याय इस प्राकृतिक दुनिया के चप्पे चप्पे में बसा हुआ है।
बिल्कुल, उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो प्राकृतिक दुनिया उसे इनाम देगी, और अगर इंसान पाप करता है तो ये दुनिया उसे दंड देगी।
सरल शब्दों में कहें तो यह मानना कि दुनिया की हर गतिविधि ईश्वर के स्वभाव और उनके न्याय का सीधा सीधा प्रतिबिंब है।
लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। ये सोच गलत है।
बाप रे, ये तो बहुत से लोगों के लिए एक झटके जैसा होगा, क्योंकि ये मानना कितना डरावना है कि आप भले ही कितने भी अच्छे काम क्यों ना करें, फिर भी प्राकृतिक ताकतें आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं।
ये सच में असहज करने वाली बात है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, हम एक अपूर्ण दुनिया में रहते हैं जहाँ डिसऑर्डर और नॉन ऑर्डर दोनों का बोलबाला है। इसलिए दुनिया की सामान्य प्राकृतिक गतिविधियां हमेशा ईश्वर के न्याय को नहीं दर्शाती। डॉक्टर वॉल्टन इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाते हैं। बारिश उन इलाकों में भी होती है जहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं है।
अरे हाँ, बंजर जमीनों पर भी बारिश होती है।
बिल्कुल, अगर बारिश सिर्फ अच्छे कर्मों का आशीर्वाद या ईश्वर का सीधा न्याय होती तो वह सिर्फ अच्छे लोगों के खेतों पर ही गिरती ना।
यह तर्क बहुत ही सटीक है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भयंकर तूफान, सुनामी, भूकंप या महामारियां, ये सब उसी नॉन ऑर्डर का हिस्सा है।
हाँ, डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ बड़ी प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर होने वाले जैविक म्यूटेशंस या कोशिकाओं में होने वाले खतरनाक बदलाव भी इसी नॉन ऑर्डर की श्रेणी में आते हैं।
मतलब बीमारियां भी?
हाँ, हमें ये समझना होगा कि ये आपदाएं या बीमारियां स्वाभाविक रूप से बुरी या नैतिक रूप से गलत नहीं है। ये बस दुनिया के उस हिस्से का परिणाम है जो अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाया है।
तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित नहीं करते? मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर के हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जिससे वो आसमान में बैठकर ये तय करते हों कि आज ये बवंडर इस घर को नष्ट करेगा और पड़ोस वाले घर को छोड़ देगा।
ये रिमोट कंट्रोल वाला नजरिया ही हमारी समस्या की जड़ है।
अच्छा।
नहीं, ईश्वर हर एक घटना को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर नहीं है।
तो फिर वो कैसे काम करती है?
वे ईश्वर के आदेश के अधीन है, लेकिन वे किसी मशीन की तरह मैकेनिकल नहीं है। जैसे इंसान ईश्वर के अधीन है लेकिन हमारे पास फैसले लेने की क्षमता है, हम रोबोट नहीं हैं। प्राकृतिक ताकतों को भी कुछ इसी तरह से देखा जा सकता है।
तो हम ये कैसे तय करें कि कब कोई आपदा ईश्वर का दंड है और कब वो महज प्राकृतिक अव्यवस्था का हिस्सा है?
सच्चाई ये है कि इंसान यह कभी नहीं जान सकता।
कभी नहीं।
नहीं, स्रोत के अनुसार ईश्वर कभी कभार इन आपदाओं का इस्तेमाल किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर प्राकृतिक घटना को ईश्वरीय दंड मानना बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें हमेशा ईश्वर के न्याय का एक सदावा हथियार मान लेना गलत है।
तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? अगर रिमोट कंट्रोल नहीं है और हर आपदा न्याय का हिस्सा नहीं है, तो फिर ईश्वर का नियंत्रण काम कैसे करता है?
ये सवाल हमें डॉक्टर वॉल्टन के शोध की सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, सिस्टम बनाम सूक्ष्म प्रबंधन, यानी सिस्टम और माइक्रो मैनेजमेंट का अंतर। यहीं पर बुक ऑफ जॉब की पूरी गुत्थी सुलझती है। डॉक्टर वॉल्टन यहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान ऊंचाई से गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है, तो क्या वो ये पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान मान लेता है कि गुरुत्वाकर्षण बस वैसे ही काम करता है जैसे उसे करना चाहिए, वो एक नियम है।
तो फिर डॉक्टर वॉल्टन पूछते हैं कि अगर इंसान ग्रेविटी पर सवाल नहीं उठाता, तो उसे ये क्यों पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति को कैंसर क्यों हो गया और दूसरे को क्यों नहीं?
लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक नियम है। जब हम बीमारियों या आपदाओं की बात करते हैं, तो लोग उसमें ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप ढूंढने लगते हैं।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो हमें ये समझना होगा कि ईश्वर की बुद्धिमता हर एक विशिष्ट घटना में नहीं खोजी जानी चाहिए।
मतलब हर एक सेल डिवीजन में?
हाँ, वो हर कोशिका के विभाजन या गुरुत्वाकर्षण की हर एक अभिव्यक्ति में अलग अलग रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय ईश्वर की बुद्धिमता उस पूरे सिस्टम में रची बसी है जिससे उन्होंने इस दुनिया को चलाने के लिए बनाया है।
एक इकोसिस्टम की तरह?
बिल्कुल, एक इकोसिस्टम की तरह। धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए हवा के दबाव में बदलाव जरूरी है। जब ये दबाव बदलता है, तो हवाएं चलती हैं, और कभी कभी वे हवाएं एक भयानक तूफान का रूप ले लेती हैं। वो तूफान किसी को सजा देने के लिए नहीं आया है, वो उस बड़ी प्रणाली के काम करने का एक तरीका है।
यानी ईश्वर दुनिया की हर एक छोटी बात का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते?
ईश्वर ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ये उनका सामान्य तरीका नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ एक मजबूत सवाल करना चाहूंगी। एक आम इंसान के नजरिए से सोचें, तो ये पूरा सिस्टम बहुत अनुचित लग सकता है।
कैसे?
क्या न्याय इस ब्रह्मांड का सबसे अहम हिस्सा, मतलब इसकी लिंचपिन नहीं होना चाहिए? आखिर हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि ब्रह्मांड न्याय के सिद्धांत पर टिका है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा।
ये हम इंसानों को बहुत परेशान करता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अच्छे कर्मों का तुरंत हिसाब दे, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नहीं, न्याय इस ब्रह्मांड की धुरी नहीं है।
न्याय धुरी नहीं है, ये बात पचा पाना सच में बहुत मुश्किल है।
इसे ऐसे समझिए, दुनिया में जो प्राकृतिक ताकतें हैं, वे नैतिक नहीं हैं।
मतलब?
मतलब उनमें ये सोचने या चुनने की शक्ति नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। सुनामी की लहरें ये देखकर किनारे तक नहीं आती कि सामने कौन संत खड़ा है और कौन पापी। वे बस पानी के विस्थापन का परिणाम है।
ये तो है।
अगर ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की नींव सिर्फ और सिर्फ सख्त न्याय पर रखी होती, तो सोचिए क्या होता।
क्या होता?
इंसान बचता ही नहीं।
अच्छा?
क्योंकि हम पतित जीव हैं, हम में कमियां हैं, हम अक्सर गलतियां करते हैं। अगर सृष्टि का हर कण तुरंत न्याय देने लगे, हर गलत काम की तुरंत सजा मिलने लगे, तो मानवता का अस्तित्व ही मिट जाएगा।
बाप रे, ये नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है।
इसलिए ब्रह्मांड न्याय के बजाय ईश्वर की विजडम यानी उनकी गहरी बुद्धिमत्ता से चलता है। ये बुद्धिमत्ता ही है जो इस अपूर्ण दुनिया में जीवन को पनपने का मौका दे रही है, भले ही इसके साथ नॉन ऑर्डर मौजूद हो।
ये सच में एक बहुत ही गहरी और हिला देने वाली बात है। मतलब अपनी इस अपूर्ण अवस्था में ये दुनिया केवल और केवल ईश्वर की उस विशाल बुद्धिमत्ता के सहारे ही चल रही है।
बिल्कुल।
हम हर एक घटना, हर बीमारी को न्याय के तराजू पर नहीं तौल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा उलझे रहेंगे।
और यही बुक ऑफ जॉब का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं कि उसे चलनी चाहिए। ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता में इस प्रणाली को स्थापित किया है जो हमारे सीमित न्याय के नजरिए से बहुत बड़ी है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि दुनिया की शुरुआत एक नॉन ऑर्डर से हुई, जिसे व्यवस्थित करने का काम ईश्वर ने शुरू किया और इंसानों को साझेदार बनाया। फिर इंसानों की वजह से डिसऑर्डर यानी बुराई ने प्रवेश किया, और सबसे अहम बात, ये ब्रह्मांड कर्म फल के सिद्धांत पे काम नहीं करता। प्राकृतिक आपदाएं किसी दैवीय रिमोट कंट्रोल से निर्देशित नहीं होती, बल्कि वे उस प्रणाली का हिस्सा है जो ईश्वर की बुद्धिमत्ता से चल रही है।
और ये ज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि जीवन के कठिन समय में हम खुद पर या दूसरों पर घटनाओं का अकारण दोष मढ़ने से बचें। इंसान ये सोचना बंद कर दे कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया था कि मुझे ये बीमारी लगी।
बिल्कुल, सोचनाओं और अपराध बोध के बोझ तले दबने के बजाय हमें एक स्पष्टता मिलती है। अंत में एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी।
जी बिल्कुल।
अगर हमारा ये ब्रह्मांड सख्त न्याय से ज्यादा एक ऐसी गहरी बुद्धिमत्ता पर टिका है जो हमारी समझ से परे है, तो अगली बार जब जीवन में कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित और अतार्किक हो, तो क्या ये सोचना बेहतर नहीं होगा कि हम एक बहुत बड़ी और जटिल कहानी का महज एक हिस्सा हैं? एक ऐसी कहानी जिसे पूरी तरह से डिकोड करना इंसान के बस में शायद है ही नहीं।
हम उस विशाल प्रणाली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं।
हाँ, याद है शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी। शायद हमें ये मान लेना चाहिए कि दुनिया के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें उस सफेद लकीर की जरूरत नहीं है, बस उस रहस्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहें।